हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रात को शिवांशा डर के मारे वेद के कमरे में जाने के बजाय वहीं बाहर बालकनी में ही सो गई थी। उसका चौहान फैमिली में पहला दिन बहुत ही बुरा बीता था। वेद अपने कमरे में उसके आने का इंतजार कर रहा था। आखिर उसे शिवांशा से अपने सवालों के जवाब जो चाहिए थे। रात के लगभग 2 बजने को आए थे, लेकिन शिवांशा अभी तक कमरे के अंदर नहीं आई थी। शिवांशा के ना आने पर वेद ने उसे पूरे घर में ढूंढा, फिर आखिर में वो उसे बालकनी में दिखी। जब वेद ने उसे उठाने के लिए हल्का सा छुआ तो शिवांशा डर कर जल्दी से खड़ी हो गई। शिवांशा अपने सपनों में फिर से वही कड़वे अनुभवों को महसूस कर रही थी जो अंकुश ने उसे दिए थे। जब वेद ने शिवांशा को छुआ तो वो जल्दी से हड़बड़ाकर नींद में बोली, प्लीज प्लीज मुझे छूना मत। डरते हुए शिवांशा की नींद टूटी तो अपने सामने वेद को देखकर वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। वो वेद के सामने नजरें झुकाकर खड़ी थी। वेद ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो घबराई हुई थी। शिवांशा को डर लग रहा था, न जाने वेद उसे उसकी गलती की क्या सजा देगा। तो वहीं वेद के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। उसे काफी अजीब लगा जब पिछली बार भी शिवांशा डर कर खड़ी हुई और इस बार भी यही हुआ था। शिवांशा का डरा हुआ चेहरा देखकर वेद को दया आने लगी। वेद ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, मुझे टाइप 2 डायबिटीज है, जेनेटिक है, और मैं बिल्कुल भी शुगर कंज्यूम नहीं कर सकता हूँ। वेद काफी शांत लहजे में उसे सब बता रहा था। शिवांशा ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। वो घबराते हुए बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए मिस्टर चौहान, मुझे नहीं पता था आपको डायबिटीज था, I am sorry, आगे से नहीं होगा। शिवांशा अपनी घबराहट में वेद की बात सुन ही नहीं रही थी तो उसे तेज आवाज में कहना पड़ा, ठीक है अब चुप करो, मान लेता हूँ तुम्हारी बात कि तुम्हें पता नहीं था, लेकिन आगे से ध्यान रखना। लेकिन अब तो पता है, आगे कोई गलती हुई तो मैं यही समझूंगा कि तुमने जानबूझकर मेरी जान लेने की कोशिश की है। शिवांशा ने जल्दी से न में सिर हिला दिया था। वो अभी भी नजरें झुकाकर खड़ी थी। वेद का डर हो या उनके बीच की उम्र का फासला, जो शिवांशा उसकी आंखों में देखकर बात कर ही नहीं पाती थी, उसके सामने हमेशा उसकी नजर झुकी रहती थी। रूम के अंदर क्यों नहीं आई, वेद ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं डर गई थी, नीचे भी सब मुझ पर चिल्ला रहे थे तो सोचा उन्हें सच पता नहीं है तो वो इतना गुस्सा हो रहे हैं। आप तो अच्छे से जानते हैं कि मेरे दादाजी ने क्या किया था, उसके बाद आपको यही लगेगा कि मैंने जानबूझकर सब किया है, शिवांशा ने सफाई देते हुए कहा। जहां वेद के शब्द और सवाल गिने चुने होते थे, वहीं शिवांशा सफाई में काफी कुछ कह जाती थी, जबकि सच ये था कि उसका कुछ भी कहना वेद के लिए मायने ही नहीं रखता था। यहां थोड़ी ठंड है, कमरे के अंदर जाकर सो जाओ, वेद ने बिना किसी भाव के कहा। शिवांशा ने जल्दी से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं मैं यहां पर ठीक हूं। मैंने कहा ना रूम के अंदर जाकर सो जाओ, वेद थोड़ा सख्ती से बोला तो शिवांशा जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वेद ने उसकी मासूमियत देखकर सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया था। उसने बिना कुछ कहे शिवांशा को काउच पर सोने का इशारा किया। शिवांशा वेद के सामने इतना घबराती थी कि अपनी बेसिक जरूरतें तक नहीं बता पाती थी। रूम का टेम्परेचर लो होने की वजह से बाहर से ज्यादा ठंड तो उसे इस कमरे में लग रही थी। वो बिना कोई शिकायत किए तकिए और ब्लैंकेट के बिना ही काउच पर जाकर लेट गई। तभी वेद ने उसके मुंह पर तकिया फेंका और अचानक उसके ऊपर एक भारी सा ब्लैंकेट आकर गिरा। शिवांशा ने जल्दी से तकिया लगाया और ब्लैंकेट में खुद को पूरी तरह लपेटकर सो गई थी। उसकी इस हरकत पर वेद ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, बेवकूफ लड़की। कुछ ही देर में शिवांशी की आंख लग चुकी थी, लेकिन एक बार फिर सपनों में अंकुश का डर उस पर हावी हो रहा था। जब शादी की रात अंकुश ने उसे किडनैप किया था, उसे जंगल में लेकर गया था, शिवांशा को वही सब नींद में वापस दिख रहा था। प्लीज प्लीज मेरे पास मत आना, चाहो तो मार दो पर कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ मत करना, मुझे हाथ मत लगाना, शिवांशा नींद में चिल्लाने लगी। जहां उस रात शिवांशा ने पूरी हिम्मत करके अंकुश को खुद से दूर धकेल दिया था, वहीं अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर उसके साथ नहीं दे रहा था और अंकुश उसके पास आ गया था। वो अपनी मनमानी कर रहा था, लेकिन शिवांशा कुछ नहीं कर पा रही थी। मत करो प्लीज मत करो, नींद में शिवांशा आने बड़बड़ाते हुए अपनी ब्लैंकेट फेंक दी थी और वो अपने हाथ पैर मारने लगी। वेद की नींद काफी कच्ची थी, छोटी सी आवाज सुनकर भी वो उठ जाता था। शिवांशा की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर वो जल्दी से खड़ा हुआ। वो समझ गया था कि शिवांशा कोई बुरा सपना देख रही है। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? न तो खुद चैन से सोती है और न ही मुझे सोने दे रही है। वेद ने इस सपने के जाल से निकलने के लिए उसका नींद से जागना जरूरी था। उसने शिवांशा को जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर उसने अपना हाथ बीच में ही रोक लिया था। अगर फिर से टच किया तो ये और डर जाएगी, वेद मन ही मन बोला, और उसने पानी का ग्लास लेकर शिवांशा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। जैसे उसकी नींद टूटी और शिवांशा ने वेद को अपने सामने देखा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। आखिर हुआ क्या है? तुम इतना डर क्यों जाती हो? किसी ने कुछ किया है तुम्हारे साथ? वेद ने हैरानी से पूछा। शिवांशा अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। वेद को इरिटेशन हो रही थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, अगर तुम्हारा ये ट्रॉमा अंकुश की वजह से हो गया है तो तुम्हें एक बात साफ कर देता हूँ, मेरा तुम्हें मारने का इरादा जरूर है, लेकिन मैं किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी वजह से डर रही हो तो मत डरो। बाकी तुम्हें मेरे इस कमरे में रहने से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूंगा। जब तक जिंदा हो तब तक बेफिक्र रहो, वेद सिंह चौहान के घर पर हो। तुम्हारे दादा ने मेरे माँ पापा को मार डाला, लेकिन 6 महीने तक तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। शिवांशा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। वेद को लगा कि इस वक्त उसका यहाँ से चले जाना ही सही होगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई लड़की अनसेफ फील करे। आज रात मैं स्टडी रूम में सो जाता हूँ, तुम यहाँ सो जाओ, बेड पर मत सोना, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बेड पर आकर सोए, वेद ने धीमी आवाज में कहा और वहां से जाने को हुआ। तभी शिवांशा जल्दी से बोली, प्लीज अकेले छोड़कर मत जाइए, डर लगेगा मुझे। वेद उसकी तरफ पलटा और बोला, रियली, मेरे यहां होने से तुम्हें डर नहीं लगेगा? मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूंगा, लेकिन इरादा जानती हो ना मेरा, जान से मारना चाहता हूं मैं तुम्हें, कहीं नींद में भी मार दिया तो मार दीजिए ना, मुझे वैसे भी इस जिंदगी से कभी प्यार नहीं रहा है, कम से कम जान से ही तो मारेंगे, जीते जी वो तकलीफ तो नहीं दोगे जो किसी और ने देना चाहिए, शिवांशा ने खुद को मजबूत करके भरी आवाज में कहा। शिवांशी की बातों से वेद को कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और फिर शिवांशा को पानी देते हुए कहा, जितना सोचोगी उतना ही सपने में वो तुम पर हावी होगा, चलो सो जाओ। शिवांशी ने पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इस बार वेद की बातों ने उस पर अच्छा असर किया था। वो सोने से पहले अपनी अच्छी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, इस वजह से उसे बुरे सपने नहीं आए। लेकिन वेद की नींद उड़ चुकी थी, उसे अंकुश पर गुस्सा आ रहा था।
तुम गिरे हुए तो पहले से थे, लेकिन ये नहीं पता था कि एक बच्ची को जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दोगे। कितने घटिया हो तुम अंकुश राजावत, वेद गुस्से में बड़बड़ाकर बोला। वो शिवांशा से कितनी भी नफरत क्यों न करता हो, लेकिन अब वो बार बार उठकर उसे देख रहा था कि वो ठीक से सोई हुई है या नहीं। कुछ देर बाद वेद भी नींद के आगोश में था। अगली सुबह हमेशा की तरह तय समय पर सुबह 6 बजे वेद की आंख खुल गई थी। उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा जो आराम से सोई हुई थी। उसे वहीं पर छोड़कर वो जिम में गया और एक्सरसाइज करने लगा। इस बीच उसके पास प्रतीक का कॉल आया। प्रतीक ने कहा, भाई काफी कुछ पता चला है, राजावत फैमिली इन्वॉल्व थी इसका तो पता हमें चल ही चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे राज हैं जो अब तक हमसे छुपे हुए हैं, और उस लड़की का पता चला कि वे उसे क्यों मारना चाहते हैं, वेद ने शिवांशा के बारे में पूछा। क्लियर रीजन मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर अंदाजा लगा सकता हूँ कि देवराज ठाकुर के मरने के बाद शायद वो आपसे डर रहे होंगे। आपसे बचने के लिए उन्होंने अपना आखिरी सबूत शिवांशा ठाकुर को मिटाना चाहा होगा, प्रतीक ने जवाब दिया। ठीक है, फिर जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करो, वेद बोला। वो कॉल कट करने को हुआ तभी प्रतीक ने बीच में कहा, आपको उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं बताना चाहिए था, उसकी जगह चौहान फैमिली में नहीं है, उसी के परिवार के वजह से हमने बुआ सा और फूफा सा को खोया था। आप क्या चाहते हैं कि उनके कातिल के वंश को हमें सिर आंखों पर बिठा कर रखें, वो भी अपने घर पर? बाकी लोगों को पता चला तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखने का, 6 महीने मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ प्रतीक, सबके सामने ये शादी आ गई है, जबकि तुम भी जानते हो हमारी शादी नहीं हुई थी। 6 महीने बाद तलाक का बोलकर हम उस लड़की को यहाँ से भेज देंगे, उसके बाद वही होगा जो उसके परिवार के साथ हुआ था। बस 6 महीने हमें शांत रहना होगा और घर पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शिवांशा कौन है, वेद ने उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, जिस पर प्रतीक ने उसकी बात पर हामी भरी। वही कॉल कट हो जाने के बाद, जिम करने के बाद वेद बाथरूम में गया और तैयार होकर कमरे में पहुंचा। उस वक्त सुबह के 8 बज रहे होंगे जब आराध्या उनके कमरे में आई हुई थी। उसने काफी सारे डिजाइनर कपड़े ले रखे थे जिसमें सूट, साड़ी, वेस्टर्न ड्रेसेस सब कुछ थे। वेद को देखते ही आराध्या ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी के पास कपड़े नहीं थे तो मैंने सोचा कि डिजाइनर को बुला करके लिए हर टाइप के कपड़े मंगा देती हूँ। वेद ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और फिर शिवांशा की तरफ देखा जो नजर झुकाकर खड़ी थी। अचानक उसे याद आया कि शिवांशा को साड़ी नहीं पहनना आता था और जब वो साड़ी पहनकर निकली तो किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। अचानक वेद के आंखों के कोने में हल्की मुस्कुराहट तैर गई। वेद ने आराध्या की तरफ देखा और उन सब कपड़ों की तरफ इशारा करके कहा, साड़ी को छोड़कर सारे कपड़े हटा दो और भी साड़ियां मंगवा देना। उसकी बात सुनकर आराध्या थोड़ा चौंक गई थी पर साथ ही उसके चेहरे पर स्माइल थी। वेद ने कभी भी अपने घर की बाकी औरतों को कुछ भी पहनने से नहीं रोका था और अब अपनी पत्नी के मामले में खास फरमाइश कर रहा था। वेद का इरादा तो शिवांशा को परेशान करना था जो साड़ी में कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वहीं उसका ये फैसला सुनकर शिवांशा भी आंखें फाड़कर वेद की तरफ देख रही थी। ठीक है, कुछ नाइट ड्रेस भी मंगवा देती हूँ, रात में साड़ी कंफर्टेबल नहीं रहती है, आराध्या ने जवाब दिया और फिर शिवांशा की तरफ देखा जिसकी साड़ी काफी बिखरी हुई थी। नहीं, सारी साड़ियां ही होनी चाहिए, वेद ने सख्त आवाज में कहा तो आराध्या आगे कुछ बोल नहीं पाई। साड़ियों को छोड़कर बाकी सारे कपड़े आराध्या ने वहां से हटवा दिए थे और फिर कमरे से चली गई। उसके जाते ही शिवांशा ने वेद से कहा, आपको पता है ना मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है और ना ही मैं इसमें ठीक से चल पाती हूँ। मैं कल 2-3 बार इसमें गिरते गिरते बची हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कल रात तुम परेशान थी और जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं इनोसेंट लोगों को सजा देने में यकीन नहीं करता, इस वजह से कल रात को तुम्हें कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मेरे दिल में कहीं से भी तुम्हारे लिए दया का भाव पैदा हो जाएगा। नहाकर चेंज कर लो, इस फ्लोर से कम बाहर निकलना और मेरे घर वालों के साथ किसी तरह का इमोशनल कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं। इस फ्लोर पर मैं हाउस हेल्पर का आना टोटली मना कर दूंगा। यहाँ की सफाई और बाकी काम तुम्हें ही देखना होगा, मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। वेद ने शिवांशा को लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया था और वो बेचारी चुपचाप खड़ी थी। ऑफिस जाने से पहले वेद स्टडी रूम में कुछ फाइल्स कलेक्ट कर रहा था तो वहीं शिवांशा नहाने के बाद मुश्किल से 1 घंटा लगाकर फिर वही बिखरी सी साड़ी पहन पाई थी। ऊपर से ब्लाउज भी उसके थोड़ा लूज था तो वो बहुत ही अजीब लग रही थी। उसने अपने बालों को पिकटेल में बांधा और फिर माथे पर हल्का सा सिंदूर लगा लिया था। तैयार होने के बाद उसने खुद को आईने में देखा। किसी भी तरीके से वो चौहान खानदान की बहू तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वेद ने शिवांशा को फ्लोर से निकलने से मना किया था लेकिन फिर भी आराध्या ने ऊपर लैंडलाइन पर कॉल करके शिवांशा को नीचे बुला लिया था ताकि वो चौहान फैमिली में थोड़ा इन्वॉल्व हो और वहां के तौर तरीकों को समझे। इन सबसे अलग अंकुश गीतिका के साथ में अपने ससुराल चौहान फैमिली यानी गीतिका की फैमिली के यहाँ जा रहा था जो कि वेद के पिता के सौतेले भाई का परिवार था। उन्हें भी वेद की शादी की खबर मिल चुकी थी और इस मामले को लेकर वो भी तह तक पहुंचना चाहते थे। उन्हें पता था कि शिवांशा कौन है और उसकी शादी किसके साथ होने वाली थी। फिर अचानक वेद ने उसे अपनी पत्नी क्यों बताया था, ये बात उन्हें भी हैरान कर रही थी। तो वेद इतना भी बुरा भी है? खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।